आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में शामिल होने आए वैश्विक नेताओं के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। प्रमुख वैश्विक हस्तियों की मौजूदगी में आज समिट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में हुई प्रदेश के आम बजट पर चर्चा। विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर उठाए सवाल। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों की राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से हो रही है ऑनलाइन मॉनिटरिंग। और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने एसआईआर प्रक्रिया को लेकर की मीडिया से बात। कहा, प्रदेश भर में 13,161 अधिकारी कर रहे हैं मतदाताओं की समस्याओं की सुनवाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शाम भारत मंडपम में इंडिया एआई इंपैक्ट समिट में शामिल होने वाले वैश्विक नेताओं का स्वागत किया। उनका स्वागत भारतीय संगीत और नृत्य के साथ किया गया। प्रधानमंत्री ने कल कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। ये नेता इंडिया एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली में है। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पेन के राष्ट्रपति पेद्रो सांचेज से भेंट की। नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं ने भारत स्पेन साझेदारी और प्रगाढ़ करने पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चर्चा के प्रमुख क्षेत्रों में व्यापार और अर्थव्यवस्था, डिजिटल नवाचार, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन और शिक्षा शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने फिनलैंड के प्रधानमंत्री आंती पेत्री ओर्पो से भी मुलाकात की। उन्होंने सतत विकास और डिजिटलीकरण, एआई अनुसंधान और नैतिक नवाचार में सहयोग पर चर्चा की। श्री मोदी ने शिखर सम्मेलन के दौरान सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्सांडर वुचिस से बातचीत में व्यापार और निवेश, एआई, वित्तीय प्रौद्योगिकी, शिक्षा, कृषि और पर्यटन में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रे प्लेनकोविच के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी की। प्रधानमंत्री ने एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस से भेंट की और दोनों देशों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। श्री मोदी ने कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओर्शास बेक्तिनोफ के साथ वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। श्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोबगे के बीच हुई वार्ता में दोनों नेताओं ने ऊर्जा, संपर्क, विकास, साझेदारी और लोगों के बीच आपसी संबंधों के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा की। अनुपम और सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया एआई इंपैक्ट समिट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन समारोह को फ्रांस के राष्ट्रपति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और दुनिया भर के विभिन्न शीर्ष उद्योगपति भी संबोधित करेंगे। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान कल विधानसभा में प्रश्न प्रहर में विपक्ष ने बिजली और गन्ना किसानों से जुड़े मुद्दों पर सवाल किए। सपा सदस्य आशु मलिक ने ग्रामीण इलाकों को नगर निगम से जोड़ने के बाद आधारभूत सुविधाओं के लिए सरकार की नीति से संबंधित सवाल उठाए। जवाब में नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कहा कि सरकार ने इस संबंध में स्पष्ट नीति बनाई है और पर्याप्त बजट भी आवंटित किया गया है। विधानसभा में कल बजट पर भी चर्चा जारी रही। भाजपा विधायक पंकज चौधरी ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश में सकारात्मक बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी और सेफ्टी के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर निवेश आ रहा है। वहीं विधान परिषद में कल समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि निजीकरण के कारण युवाओं को रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं। सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि युवा शक्ति सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में 8,45,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। प्रदेश सरकार ने जिला स्तर पर पांडुलिपियों की पहचान और दस्तावेजीकरण करने तथा उन्हें वैश्विक मंच पर डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए हैं। ये पहल भारत के समृद्ध ज्ञान, परंपरा और बौद्धिक विरासत को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय अभियान ज्ञान भारतम मिशन के तहत हुई है। इसकी निगरानी के लिए प्रत्येक जिले के मुख्य विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया गया है। इस अभियान का उद्देश्य इस अमूल्य विरासत को शोधकर्ताओं, छात्रों और आम जनता के लिए सुलभ बनाना है। उत्तर प्रदेश के लिए इस अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि राज्य को प्राचीन ज्ञान, दर्शन, साहित्य और संस्कृति का ऐतिहासिक केंद्र माना जाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू हो गईं। प्रदेश भर में 8,000 से अधिक केंद्रों पर ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिसमें 53 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं शामिल हो रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी ने बोर्ड परीक्षा के पहले दिन लखनऊ के जियामऊ स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में छात्राओं को टीका लगाकर शुभकामनाएं दी। उन्होंने विद्यार्थियों से तनाव मुक्त होकर परीक्षा देने की अपील की।
बच्चों को ये संदेश देंगे कि बच्चों ने पूरी साल जो मेहनत की है, हमारे शिक्षकों ने जो मेहनत की है, हमारे बच्चे तनाव मुक्त होकर परीक्षा करेंगे, हमारे सारे शिक्षक तनाव मुक्त होकर परीक्षा में रहेंगे और हमारे सारे अधिकारी बहुत ही लगन और उत्साह के साथ में इन परीक्षाओं में लगे हुए हैं और बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। किसी प्रकार की कहीं कोई परेशानी बच्चों को नहीं होगी और ना कोई नकल की संभावना है। नकल की संभावना तो माननीय योगी जी की सरकार में है ही नहीं।
यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि प्रदेश के सभी जनपदों में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षाएं कराई जा रही हैं। सभी परीक्षा केंद्रों की निगरानी राज्य स्तरीय हाईटेक कंट्रोल रूम से लाइव ऑनलाइन मॉनिटरिंग और वेबकास्टिंग के जरिए की जा रही है। श्री सिंह ने बताया कि परीक्षा में गड़बड़ी या नकल करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यदि कोई इसमें बाहरी तत्व है, असामाजिक तत्व है जो अफवाह फैलाता है या नकल कराने में योगदान देता है तो उनकी FIR कराई जाएगी। जो अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 है उसमें प्रावधान है कि ये संज्ञेय अपराध है, उनको 7 साल की जेल हो सकती है और साथ ही साथ लगभग 50 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कल लखनऊ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान को लेकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि SIR प्रक्रिया में प्रदेश भर में 13,161 अधिकारी मतदाताओं की समस्याओं की सुनवाई कर रहे हैं। अगले माह 27 मार्च तक सुनवाई पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी से 17 फरवरी 2026 तक 54,44,000 से अधिक फॉर्म 6 आए हैं।
1,04,00,000 ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने पिछले SIR में वोटर लिस्ट से जो मिलान कराना था वो खाना बिल्कुल खाली छोड़ दिया, तो मैपिंग नहीं कराई थी, मिलान नहीं कराया। 2,22,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने मिलान तो करवाया था बट उसमें कोई तार्किक विसंगति नहीं, कमियां नहीं, जिसकी वजह से उनको भी नोटिस गया। 1,85,00,000 नोटिसेस मतदाता को हमने दे दिए और 1,15,00,000 हमारी सुनवाइयां भी पूरी हो गई।
कल रमजान का चांद दिखने के बाद पूरे देश में तरावीह की विशेष नमाज शुरू हो गई। मरकजी शिया चांद कमेटी ने रमजान का चांद दिखने की पुष्टि की। कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास ने बताया कि आज से रोजे रखने का सिलसिला शुरू हो रहा है। मथुरा जिले में कल देर रात हुए एक सड़क हादसे में एक ही कार सवार सभी 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब गोवर्धन से डीग की ओर जा रही कार नगला देविया बाईपास पर अनियंत्रित होकर पानी की टंकी से टकरा कर नाले में गिर गई। पुलिस ने कार में सवार सभी 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की है। प्रदेश में आगामी 24 फरवरी तक मौसम के शुष्क रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार इस अवधि में प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना व्यक्त की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया AI इंपैक्ट समिट में शामिल होने आए वैश्विक नेताओं के साथ की द्विपक्षीय बैठकें। प्रमुख वैश्विक हस्तियों की मौजूदगी में आज समिट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान दोनों सदनों में हुई प्रदेश के आम बजट पर चर्चा। विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष ने अलग अलग मुद्दों पर उठाए सवाल। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों की राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से हो रही है ऑनलाइन मॉनिटरिंग। और प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने SIR प्रक्रिया को लेकर की मीडिया से बात। कहा प्रदेश भर में 13,161 अधिकारी कर रहे हैं मतदाताओं की समस्याओं की सुनवाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।